उर्वशी का प्रकृति चित्रण। प्रकृति शब्द अंग्रेजी के नेचर का पर्याय है। प्रकृति का शाब्दिक अर्थ है स्वभाव, मिजाज, वह मूल सत्ता जिसका परिणाम जगत है, माया, परमात्मा तथा पंचभूत आदि। कविता में प्रकृति चित्रण से तात्पर्य है कवि का रागात्मिका वृत्ति का आधार लेकर मूल सत्ता, माया, परमात्मा तथा पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का अपने अपने ढंग से सहज एवं स्वाभाविक चित्रण करना। इस प्रकार अंशी रूप प्रकृति, मूल सत्ता, माया, परमात्मा, पंचभूत का मानव एक अंश है। अतः मानव और प्रकृति का शाश्वत काल से अनन्याश्रित संबंध है। जीवन तथा साहित्य दोनों में ही इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कला और साहित्य की यह मूल प्रेरणा और कवि के भाव स्फुरण की आधारशिला है। इसके अंश होने के कारण हम प्रकृति में अपने क्रोध, प्रसन्नता, उमंग, उल्लास आदि भावों की छाया भी देखते हैं। प्रकृति का सौंदर्य शाश्वत है। इसके सौंदर्य पर मानवीय जगत की विभीषिकाओं का कोई प्रभाव नहीं देखा जाता। दुख की ज्वालाओं में जलते संसार के बीच यह अपने ही आनंदोल्लास में थिरकती रहती है। अंग्रेजी कवि टेनिसन ने प्रकृति की शाश्वतता के अभिव्यक्ति इन शब्दों में की है। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। प्रकृति का यह शाश्वत सौंदर्य ही अनादि तत्वों की रहस्यमय सत्ता को जानने का राजद्वार है। किंतु प्रकृति से सहज एवं अटूट संबंध स्थापित करने के लिए मानव में सदैव रागात्मिका वृत्ति के रहने की परमावश्यकता है। मनुष्य शेष प्रकृति के साथ अपने रागात्मक संबंध का विच्छेद करने से अपने आनंद की व्यापकता को नष्ट करता है। आदिकाल से लेकर अब तक विभिन्न कवियों की रागात्मिका वृत्ति में अनेक रूपता होने के कारण विभिन्न कवियों की प्रवृत्ति, निरीक्षण और अनुभूति के अनुसार प्रकृति का चित्रण कई ढंग से हुआ है। प्रकृति चित्रण के भेदोपभेद का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला, आलंबन रूप। इसमें अ, नाद व्यंजना अथवा अनुरणनात्मकता। ब, प्रकृति का रूप विस्तार। स, गतिविधि का निरीक्षण। ज, वर्ग रंगों की पहचान। ह, गंध की संवेदना या स्पर्श की संवेदना। दूसरा, उद्दीपन। तीसरा, मानवीकरण। चौथा, आलंकारिक विधान। पांचवा, प्रतीक विधान। छठा, रहस्यानुभूति अथवा रहस्य सत्ता की अनुभूति। सातवां, उपदेशात्मकता। आठवां, पृष्ठभूमि वे वातावरण की सृष्टि के रूप में। नौवां, कवि समय के रूप में। उर्वशी के आधार पर इन भेदोपभेदों का संक्षिप्त विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, आलंबन के रूप में। आलंबनो नाविकादिस्त मालंब्य रसो गमात, अर्थात जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण नायक आदि में कोई भाव जागृत होता है उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव ही वास्तविक रसभूमि है। इसके बिना काव्य रचना और काव्यास्वाद दोनों ही असंभव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो आलंबन मात्र के विशद वर्णन को श्रोता में रसानुभव करने में पूर्ण समर्थ मानते हैं। यदि कवि ने प्रकृति का आँख खोल कर मौलिक दर्शन न किया तो प्रकृति के अन्य प्रयोगों में भी उसका दौर्बल्य झलक जाएगा। प्रकृति को आलंबन रूप में वर्णन करने पर कवि की दो स्थितियां हुआ करती हैं। पहला, प्रकृति के प्रति उन्मुक्त प्रेम भाव की व्यंजना। दूसरा, प्रकृति का शब्द चित्रण। आलंबन रूप में प्रकृति के इस दृश्य चित्रण के कवि की सूक्ष्मदृष्टता के आधार पर छह भेद होते हैं। उर्वशी में इन सभी के उदाहरण मिल जाते हैं। पहला, नाद व्यंजना। प्रकृति स्वतः संगीतमयी है। इसमें कवि के चारों ओर नाना प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे पक्षियों का कलकूजन, भ्रमरों का गुंजार, लहरों की कलकल, वृक्षों का मर्मर स्वर आदि। उर्वशी में भी नाद व्यंजना मिलती है, यथा शांत शांत सब ओर, किंतु यह कोणन कोणन स्वन कैसा, अतल व्योम उर्मे एक ऐसे नूपुर झनक रहे हैं। श्रवण कर रहे थे मयूर तट पर से कान लगाकर, मेघ मंद्र डुगडुग ध्वनि जलधारा में घट भरने के। झलमल झलमल सरित सलिल वह उषा की लाली से, शस्यों पर बिछली बिछली आभा वह रजत किरण की। चहक चहक उठना वह विहुओं का निकुंज पुंजों में, स्वर्गवासिनी मैं श्रद्धा से नमस्कार करती हूँ, अविनश्वर सौंदर्य पूर्ण नश्वर इस महामही को। इस प्रकार कवि ने अनुरणनात्मक शब्दों द्वारा प्रकृति का सजीव और मनोहारी वर्णन किया है। ब, प्रकृति का रूप विस्तार। प्रकृति के रूप विस्तार के लिए कवि को प्रकृति के अंतस्य गहन ज्ञान से युक्त होना परमावश्यक है। रूप विस्तार में पर्वत, भूमि, मैदान, कुंज, पेड़, पौधे, लता, पत्र, छाया, समुद्र, नील, झील, नदियां, आकाश, मेघ, बिजली, सूर्य, चंद्र, उषा, संध्या, इंद्रधनुष आदि के चित्र सम्मिलित हैं, जिनका कवि उल्लेख मात्र नहीं करता अपितु कवि कल्पना के द्वारा उनमें कमनीयता पैदा करता है। यथा फूलों की नाव बहाओ री यह रात रुपहली आई, फूटी सुधा सल की धारा डूबा नभ का कूल किनारा, सजल चांदनी की सुमंद लहरों में तैर नहाओ री। दूर दूर तक फैल रही दूबों की हरियाली है, बिछी हुई इस हरियाली पर शबनम की जाली है, बिछा हुआ है जाल रश्मि का यही मान सोती है। उपर्युक्त चित्रण के आधार पर यह सहज स्पष्ट है कि कवि ने प्रकृति अवयवों का परिगणन मात्र नहीं किया अपितु अपने सूक्ष्म कल्पना के द्वारा उनमें कमनीयता पैदा की, उनको भाव के रंगों तथा कला की तुलिका द्वारा नए रंग प्रदान किए। स गतिविधि का निरीक्षण। इसमें कवि वस्तु व्यापारों की सूक्ष्म गतिविधि का ऐसा अंकन करता है कि उससे उसकी दृष्टि की निकट दर्शिता सूचित हो। जब तक प्रकृति के प्रति राग नहीं होता तब तक यह कार्य संभव नहीं। उर्वशी में प्रकृति के अनेक ऐसे रूप भरे पड़े हैं, उदाहरणार्थ दिनकर की निशा के प्रति निकट दर्शिता का यह चित्र प्रस्तुत है। रक्ष कल्प झलमिल भावों का, चंद्रलिंग स्वप्नों का, दिवस ऋतु एकांत याम निधात्री है माता है, आती जब शर्वरी पहुंचती नहीं विश्व के सिर से, केवल तपन चिन्ह केवल लांछन सफेद किरणों के, श्रमहारी निर्मोघ शांतिमय अपने तिमिरांचल से, कोलाहल कर्कश निनाद को भी समेट लेती है। ज वर्णों या रंगों की पहचान। कवि प्रकृति का प्रेमी होता है, वह अपनी प्रकृति प्रेमिका को विभिन्न वर्णों या रूप रंगों में देखता है। इस चित्रण में कवि की भावना सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाती है। रंगों का स्थूल रूप ही चित्रित करना पर्याप्त नहीं है अपितु जिनकी दृष्टि सूक्ष्म रूप धारण कर रंगों के विभिन्न भेद प्रभेदों, छायाओं व मिश्रणों को टटोल कर ढूंढ निकालती है, वे अधिक सच्चे कवि कहलाते हैं। प्रकृति में नीला, लाल, बैंगनी, हरा, नारंगिया और पीला रंग अधिक मोहक एवं सजीव लगता है। इस विषय में उर्वशी का यह उदाहरण प्रस्तुत है। देह कांत पीतिमा युक्त गति नहीं पदों के वश में, चल लेती है किसी भांति पीकर उस मेघाली सी, जो समुद्र का जल पीकर मंथर डगमगा रही है। कब था ज्ञात मुझे इतनी सुंदर होती है नारी, लाल लाल वे चरण कमल से, कुमकुम से, जावक से, तन की रक्त इमकांत शुद्ध जो धुली हुई पावक से, बजा व्योम वीणा के तार भरती हम नीली झंकार। गंध की संवेदना। समुद्र के तट पर प्रथम वर्षा के समय हल जुती धरती से, सावन भादों की कड़ी धूप में जलते जंगली लता पत्रों से, प्रभात पवन से तथा पुष्पों से विशेष प्रकार की मधुर गंध निकलती है। कवि दिनकर का ध्यान इस ओर विशेष नहीं था, यत्र तत्र पुष्पों के सौरभ का वर्णन अवश्य मिल जाता है, लेकिन वह भी हमारे लक्ष्य की पूर्णतः तृप्ति नहीं कर पाता। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत संदो, गंध के श्लोक से बाहर न जाना चाहता हूं मैं, इसी अग्र की ताप तप्त मधुमयी गंध पीने आई। स्पर्श की संवेदना। त्वचा के माध्यम से प्राप्त मृदुल तरल अनुभूतियां वाणी पाने के लिए संवेदनशील कवि के हृदय को गुदगुदा कर मचल उठती हैं। शरद शशि की रश्मियां, शीतकाल की दोपहरी की सुखद धूप, प्रातः पवन, श्याम सलोनी छाया व कनक किरण आदि के स्पर्श पुलकाकुल करने वाले होते हैं। कवि ने चांदनी रात का कितना गहरा संवेदनपूर्ण स्पर्श किया है यह द्रष्टव्य है। मुदित चांद की अलकें चूमो, तारों की गलियों में घूमो। दूसरा उद्दीपन रूप। प्रकृति का उद्दीपन के रूप में प्रयोग उसका एक अत्यंत व्यापक प्रयोग है। इसमें कवि का प्रकृति के प्रति स्वतंत्र अनुराग व्यक्त न होकर मानव सापेक्ष रूप ही प्रकट होता है। प्रकृति मानव के सुख में सुखी व दुख में दुखी दिखाई जाती है। उद्दीपन रूप में प्रकृति जड़ भी हो सकती है और चेतन भी। यूं तो उर्वशी में प्रकृति के चित्रण उद्दीपन रूप में सैकड़ों प्रसंगों में दर्शित हैं, मगर एक प्रसंग कवि ने बड़े आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। पुरुर्वा पार्थिव शरीर के आलिंगन परिरंभण का मोह त्याग कर ऊर्ध्वलोक में उठना चाहते हैं, उर्वशी भला यह कैसे देख सकती है। अतः पुरुर्वा का ध्यान भंग कर उसे पुनः आलिंगन पाश में बद्ध करने के लिए वह प्रकृति का अत्यंत उद्दीपन रूप में वर्णन करती है। यहाँ कवि की शैली दर्शनीय है। ना यो नहीं, अरे देखो तो उधर बड़ा कौतुक है। नगपति के उत्तुंग समुज्ज्वलहीन भूषित शृंगों पर कौन नई उज्ज्वलता की तुली सी फेर रहा है। कुछ वृक्षों की हरित मौली पर कुछ पत्तों से छनकर छांह देख नीचे मृगांक की किरणें लेट गई हैं। दमक रही है कपूर धूली विधिवधुओं के आनंद पर, रजनी के अंगों पर कोई चंदन लेप रहा है। कम कर दी दूरता कौमुद ने भू और गगन की, उठी हुई सीमा ही व्योम को झुका हुआ सा लगता है। इस प्रकार उर्वशी ने किरणों के धरती पर लेट जाने, रजनी रूपी नायिका के मुख पर चंदन के लेप करने, धरती का कुछ ऊपर की ओर उठने तथा आकाश का धरती के ऊपर झुकने के द्वारा पुरुर्वा के मानस में पुनः काम व्यापारों को जागृत करने की सफल चेष्टा की है। तीसरा, मानवीकरण रूप। अमानव में मानव गुणों के आरोप करने की साधारण प्रवृत्ति या प्रक्रिया को मानवीकरण कहा जाता है। अर्थात जब कवि प्रकृति के विभिन्न व्यापारों में व्यक्तिगत जीवन का आरोप कर लेता है, तो पशु पक्षी वृक्ष लता चांद तारे सभी में उसे मानव क्रियाकलाप की झलक मिलती है। प्रकृति चित्रण के इसी रूप को मानवीकरण कहते हैं। निशा को कवि ने एक सम्राज्ञी का रूप प्रदान किया है, उसकी अनुपम छटा देखिए। सम्राज्ञी विभ्राट कभी जाते इसको देखा है, समारोह प्रांगण में पहने दुकुल तिमिर का, नक्षत्रों से खचित कुल कीलित झालरें विभा की, गुथे हुए चिकुर में सुरभित दाम श्वेत फूलों के। इसी प्रकार जब से तुम आई धरती पर फूल अधिक खिलते हैं, दौड़ रही कुछ नई दीप्त सी शीतल हरियाली में सब हैं सुखी, एक नक्षत्रों को ऐसा लगता है जैसे कोई वस्तु हाथ से उनके निकल गई हो। रुदन किया होगा कितना अम्बुध ने तुम्हें गंवा कर, या शून्य हो गया सारा हृदय महासागर का। कैसे वे तटनियां उछलती हुई सुढ़ाल शिला पर हमें देख चलने आती थीं और अधिक इठला कर। मानवीकरण के एक से एक उत्तम चित्र उर्वशी में मिल जाएंगे। चौथा, अलंकारिक विधान। अलंकरण रूप में प्रकृति का वर्णन सबसे अधिक हुआ है। कवि नर नारी के सौंदर्य को द्विगुणित करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकारों के लिए कवि को उपमानों को चयन स्थूल अथवा सूक्ष्म जड़ अथवा चेतन प्रकृति से ही करना पड़ता है। प्रकृति के आंचल से लिए गए उपमानों से प्रकृति मानव के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। दिनकर ने उर्वशी में आलंकारिक चित्रण की अतिशयता अवश्य की है, मगर उसे उपहासास्पद या कृत्रिम नहीं कहा जा सकता। प्रकृति का एक से एक आलंकारिक चित्रण अनुपम है, यथा उर्दंड परिपुष्ट मध्य कृष्ण प्रथुल प्रलंब भुजाएं वक्ष स्थल उन्नत प्रशस्त कितना सुभव्य लगता था, उषा विभासित उदल उदय शैल की मानो स्वर्ण शिला। उत्प्रेक्षा। दूसरा, यह शिला सावक्ष ए चट्टान सी मेरी भुजाएं। उपमा। शांत शांत सब ओर मंजुमानो चंद्रिका मुकुट में प्रकृति देख अपनी शोभा अपने को भूल गई हो। उत्प्रेक्षा। मुख सरोज मुस्कान बिना आभा विहीन लगता है। रूपक। पांचवा, प्रतीक विधान। मानव मन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने में प्रतीक विधान का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य कोश में प्रतीकवाद की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, प्रतीकों के माध्यम से किसी विषय का प्रतिविधान करना प्रतीकवाद कहलाता है। वैसे तो प्रतीक अनेक प्रकार के माने गए हैं, परंतु उनमें से मुख्य प्रकार तीन हैं, सृजन के प्रतीक, नाश के प्रतीक, काम के प्रतीक। उर्वशी में अधिकतर काम के प्रतीकों के दर्शन होते हैं। कवि ने यौवन तथा सौंदर्य के अनेकों नवीन प्रतीकों की योजना की है, यथा वक्षस्थल के लिए स्वर्ण शिला, जटाओं के लिए नागिन कृषानुसम कपोल तथा अधर, रक्त के लिए सूर्य तथा मधुरस के लिए चंद्रमा के प्रतीकों की योजना अपने आप में नवीन है। दीप किलौ चातक किरण कमल चंद्रमा मीन आदि पदार्थ क्रमशः मूक व्यथा अतृप्त तृषा आनंद का प्रकाश पवित्रता शीतलता तड़फ आदि मानसिक स्थितियों के प्रतीक हैं, जिनका उर्वशी में स्थान स्थान पर चित्रण किया गया। छठा, रहस्याभिव्यक्ति का रूप। जब कवि के चित्त में प्रकृति का रोम रोम इस प्रकार रम जाए कि उसके अंतस में उसे अदृश्य सत्ता के दर्शन अथवा उसका आभास होने लग जाए, वहां प्रकृतिवादी रहस्यानुभूति होती है। उर्वशी का तीसरा अंक तो इस रहस्यानुभूति की प्रवृत्ति से ओतप्रोत है। प्रकृति में रहस्य सत्ता के अभिव्यक्ति के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। रक्त की उत्तप्त लहरों की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूं भेद उसका जान लूं, पंथ हो सौंदर्य की आराधना का व्योम में अधि शून्य के उस रेख को पहचान लूं। ए किरणे ए फूल किंतु अंतिम सोपान नहीं है, उठना होगा बहुत दूर ऊपर इनके तारों पर, स्यात उर्ध उस अंबर तक जिसकी ऊंचाई पर से यह मृत्यु का विहार दिव्य किरणों का हीन लगेगा। रुको, पान करने दो शीतलता शतपत्र कमल की, एक सघन क्षण में समेटने दो विस्तार समय का, एक पुष्प में भर्तृकाल की सुरभि सुंग लेने दो। इसी प्रकार निशा योग जागृति का क्षण है। हाय तृषा फिर वही तथा शिखरों में जो मौन आदि पद्यांश भी दर्शनीय है। सातवा उपदेशात्मक रूप, कोरा एवं रूखा उपदेश किसी काम का नहीं। हाँ, जब प्रकृति के उपकरणों के माध्यम से उन्हें नए सांचे में ढालकर व्याप्त किया जाता है, तब उसकी बहार ही और होती है तथा उसका प्रभाव भी अमिट होता है। उर्वशी में सुक्तियों के रूप में इसका सफल प्रयोग हुआ है। जितना ही जो जलधिरत्न पूरित विक्रांत अगम है, उसकी बाणवाग्नि उतनी ही अविश्रांत दुर्दम है। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। आठवां, पृष्ठभूमि में वातावरण सृष्टि का रूप, प्रबंध काव्यों में किसी गंभीर स्थिति या प्रसंग के उपक्रम स्वरूप तथा भावोत्कर्ष के लिए प्रकृति के द्वारा पृष्ठभूमि व वातावरण का भी निर्माण होता आया है। पृष्ठभूमि से रूप में प्रकृति के वे चित्र अंक के प्रारंभ अथवा अंत में आते हैं। उर्वशी में भी ऐसे प्रसंगों की बहुलता है। प्रथम अंक में प्रकृति का यह आलंबन लेकर आगामी पूर्वा उर्वशी की प्रेम कथा का परिचय दे दिया गया है। यथा सारी देह समेट निविड़ आलिंगन में भरने को, गगन खोल कर बांह विशुद्ध वसुधा पर झुका हुआ है। इसी प्रकार तृतीय अंक के अंत में कवि ने किसी नवीन पादप के जन्म का उल्लेख करके आगामी अंक में उर्वशी के शिशु होने का पूर्व संकेत दे दिया। हिमसनाथ सिक्त वल्लरी पुजारिन को देखो, पति को फूलों को नया हार पहनाती है, कुंजों में जन्मा है कल को ये वृक्ष कहीं, वन की प्रसन्न भेगावली सोहर गाती है। नौवां, कवि समय का रूप, कविगण कुछ प्राकृतिक पदार्थों का ऐसे रूप में ही वर्णन करते हैं जो वस्तुतः प्रकृति के क्षेत्र में नहीं दिख पड़ता, जैसे नदियों में कमल का खिलना, चकोर का चिंगारियां चुगना, चकवा चकवी का रात्रि में युक्त होना आदि। इस रूप में केवल निश्चित पदार्थों का ही वर्णन किया जा सकता है, जिसके विषय में कवियों का समझौता सा हो गया है, इसलिए उन्हें कवि समय सिद्ध कहा गया है। उर्वशी में कवि समय के चित्र उपलब्ध नहीं होते, अतः यहाँ इसके सिद्धांत पक्ष को व्यक्त करना ही उद्देश्य था। निष्कर्ष, उर्वशी में दिनकर का यह प्रकृति चित्रण देखने के पश्चात चित्त में एक मूल सत्य का उद्भावन तो यह होता है कि राष्ट्र कवि गुप्त आदि की भांति दिनकर के मानस में बैठा हुआ कवि न तो अवरुद्ध हुआ है, न उसकी गति धीमी पड़ी है तथा न ही समतल पृष्ठभूमि पर आई है, अपितु वह तो निरंतर विकसनशील है। और दूसरे इस काव्य के प्रणयन में कवि ने अपनी दिशा को ही बदल दिया। जहाँ कवि ने पूर्व रचनाओं में सृजन और नाश के मौलिक प्रतीकों का स्थापन किया है, वहाँ उर्वशी में इन प्रतीकों से परे हटकर काम के जीवंत प्रतीकों का उद्भावन किया। इससे सिद्ध होता है कि कवि की काव्य मंजूषा नाना रंगावलियों से युक्त है, उसमें भावना के रंग भरे हैं जिनको कवि ने कल्पना की तूलिका द्वारा नाना चित्रों में उपस्थित किया है। समाप्त।